खेलो। कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किस लिए लोग रो रहे हैं। तो भाई ये मर गए हैं। मर गए हैं तो क्या भारी बात हो गई, गए हैं। अरे दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, बनारस गए हैं, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है, फिर आ जाएंगे। तो नहीं, वो अब नहीं लौटे, झूठ मूठ हमको बच्चे समझ करके कह रहे हो, यहीं पर तो ये सोए हुए हैं, चद्दर उठा करके सुला दिया है, ये बातचीत नहीं करते, इनको उठा लो ये बातचीत करें। बात तो ठीक कहते हो, यहीं पर उनको सुलाया गया है, किंतु ये मर गए हैं। तो फिर वही बात, गए कहाँ हैं, ये तो यहीं पर सोए हुए हैं। आप लोग भी विचार करेंगे इन बातों पर, सोए हुए हैं। अरे नहीं, ये बोलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं बोलेंगे, आ तो इसमें नहीं है। फिर वही बात हम कहते हैं कि हमने आंखों से इन्हीं को देखा था, यहीं पर सोए हुए, यही तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे पति हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये बोलते ही नहीं हैं। तो नहीं, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये चले गए, मर गए। अरे नहीं भैया, देखो जिसको तुमने पिता समझा था, जिसको खिलाया था, जिनसे शादी हुई थी, वो तो यहीं पर हैं। नहीं, इनके अंदर में जो चीज थी वो चली गई। अंदर में चीज थी चली गई, देखा था कभी? अच्छा ये बतलाओ, जो चली गई जिसके लिए तुम लोग रोते हो, यदि इसके लिए रोते हैं तो यहां पर पड़ा हुआ है, और यदि इसी को पिता कहते हैं तो ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पुत्र यहीं पर पड़े हुए हैं। और यदि कोजे नहीं इसमें से चले गए तो ठीक है, मैं कहता हूं जो वो कितने लंबे थे जो चले गए थे, उनका रंग सांवला था या गोरा था, कितने फुट लंबे थे, क्या उनका रंग था, उनका नाम क्या था, तो ये तो हमने देखा नहीं। तो देखा नहीं तो उनके लिए रोने की जरूरत क्या है, जिनके लिए रो रहे वो तो यहां पर है, उनके लिए रो मत, आज जो चले गए हैं उनको कभी देखा नहीं। तो कुछ आश्चर्यचकित हुए, उनकी बात सुनने लगे। देखो एक बात मैं पहले बतलाता हूं, एक कबूतर और एक कबूतरी थी, दोनों के बहुत से कुछ बच्चे हो गए, उनके घोंसले में रख करके वो कहीं उड़ गईं, उनके लिए कुछ चारा लाने के लिए, चारा माने कुछ कीड़े मकोड़े इधर उधर से ले आएंगे। जंगल में गए, एक नदी के किनारे सुंदर हरा भरा मैदान था, एक पेड़ की डाल पर बैठे, और उन्होंने देखा जैसे एक सुंदर हरी सी वही सतरंगी जैसे मानो बिछी हुई है, दूब की घास की बहुत सुंदर, और उस पर कुछ चावल के कण बिखेर दिए गए थे। श्रीमती जी ने कहा, प्रियतम बड़े सुंदर सुंदर चावल के कण पड़े हुए हैं, चलो हम लोग चुन लें, बच्चों के लिए ले जाएंगे, अपने भी खाएंगे। श्रीमान जी ने कहा, नहीं प्रिय, यहां पर बनिए की दुकान थोड़े है, या कृषि गृहस्थ का घर थोड़े है जो यहां पर चावल के कण आएंगे, ये तो षड्यंत्र करके किसी बहेलिए ने ये चारा डाला है हम जैसे पक्षियों को पकड़ने के लिए, मत जाओ। उन्हें कहा, जी आप पुरुषों को सब समय षड्यंत्र की बू आती है नजर, मैं तो चली और ये कह करके, तुम बैठो मैं जा रही हूं, फुर रोड़ी और चली गई और खाने लगी, और उनको इशारे से बुलाने लगी, देखो तो कहां कोई कुछ है, खाने लगी। और इतने में बहेलिया पेड़ की कहीं जड़ में छिपा हुआ था, उन्होंने रस्सी को देखा जी अब तो खूब खाने लगी, बस खींच दिया और उसके अंदर में वो बंद हो गई, अब तो बिलबिलाने लगी। अब ऊपर से श्रीमान जी कहते हैं, तुमको मैंने मना किया ना, अरे तुम्हारे बदले में मैं मर जाता कोई बात नहीं, तुम बच्चों का पालन पोषण कर सकेगी, उन्हें दूध पिला सकती है, खिला सकती है, मैं तो कुछ कर ना सकता है, तो मेरे बदले में यदि तू छूट जाती मैं मर जाता तो अच्छी बात थी। और कहते हुए बिल बिलाता है और रोता हुआ वो भी वो जाल के समीप में आकर के उसके चोंच में चोंच मिला करके वो भीतर से ये बाहर से बिलाप करने लगे थे। ऐसा विलाप करने लग गया कि शरीर की सुध बुद्धि नहीं रही और वो काला सा मुस्तंड बहेलिया हंसता हुआ क्रूर हंसी और ताली बजाता हुआ उसने अपने धनुष बाण उठाए और ऐसा अनुसंधान किया मारा कि उसकी छाती में लगी और वो छेद हो गया, लहू लुहान हो गया और वहीं पर गिर पड़ा, लूट गया। भीतर में उसकी पत्नी उसके सामने में ये मरा और भीतर में बिल भी ला रही हैं और ये सामने बाहर में रहते हुए भी लहू लुहान होकर के बस लुढ़क गया और ताली बजाता हुआ आया। उसको तो रस्सियों से बांध करके इसके पैर को भी दोनों को बांध लिया और अपने यहाँ पर रख करके चला गया अपने घर। वहां पर उसको पका पका करके खा लिया होगा। कह रहे हैं यहाँ पर जम महाराज जी, देखो जो मरा तो मरा और तुम भी उसी तरह से बहेलिए की भांति, जो बहेलिए उस कबूतर की भांति बिल बिला रहे हो, उसके से कुछ शिक्षा तुम नहीं लिया। मरना है जरूर तो उसके लिए कुछ चिंता करो, कुछ भगवान का नाम करो, जैसे तुम्हारी कुछ रिहाई हो जाए, फिर मनुष्य जन्म में या किसी तरह से नहीं आना पड़े, इसके लिए चिंता करो न कर करके। उसके लिए रोते 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 तुम्हारा भी जीवन था वो भी गया। बहेलिया मैंने कौन, ये जम काल, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। क्यों नहीं भगवान की कुछ चिंता की जाए। इसलिए कहते हैं कि देखो मरना तो जरूरी सबको है, ऐसा कुछ किया जाए। क्या किया जाए उसके लिए बतला रहे हैं, बैठिए बतला रहे हैं। देखो हम हैं क्या तत्व, मैं दुख नहीं चाहता, मैं सुख चाहता हूं। सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए हम सभी लोग अच्छा बुरा कर्म करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, शादीशुदा होते हैं। किस लिए? जीवन का मूल उद्देश्य दो, सुख मिले दुख न मिले। और इसीलिए हम परिश्रम जो कुछ करते हैं संसार में इसी के लिए, विदेश भी जाते हैं सब कुछ, यहाँ तक कि जानते हैं कि एक्सीडेंट में हम मर जाएंगे तो भी एरोप्लेन में बैठ करके जाते हैं और एक नहीं 300 400 500 आदमियों के साथ में समुद्र में डूब जाते हैं, चकनाचूर हो जाए। जानते हैं ये हो सकता है, जानते हैं कि मैं चोरी और डकैती करने जाता हूँ, हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा और मारा भी जाऊँगा और तो भी करते हैं ये सुख के लिए। जानते हैं कि शराब पीना बहुत गंदी चीज़ है और तभी शराब पी करके अपने दुखों को भूलने की चेष्टा करते हैं। दुख तो जाएगा नहीं किंतु दुखों को क्षणिक मात्र के लिए भूल जाने के लिए हम शराब और ये सब चीज़ें खाते हैं। जानते हैं मांस माने क्या होता है, मांस खादती, जिसको हम अभी मार करके खा रहे हैं, जिन गायों को, कुत्तों को या सुअर को या और मुर्गे को, बत्तख को, वो भी हमें मार करके खाएंगे एक दिन, रिएक्शन जरूर होगा, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। तभी हम करते हैं पाप करते हैं, जानते हैं कि इसका फल बुरा है, तभी हम करते हैं। चित्त दुर्बल होने के नाते अपने सुख के लिए ऐसा करते हैं, जानते हैं हम। इसलिए हम कहते हैं कि हम जीव हैं, ये शरीर के अंदर में हम शरीर नहीं हैं। इस चीज को समझने की मनुष्य होकर के यदि इसने नहीं सोचा किसी ने तो मनुष्य जीवन बेकार है। इसलिए इस शरीर के अंदर में, प्रत्येक शरीर के अंदर में जीवात्मा है और वो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। यह एक निर्धारित सत्य है। हम भगवान को किसी कारण से भूल जाते हैं और भूलने के वजह से हम कभी मनुष्य जन्म होते हैं, कभी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि बहुत प्रकार के जन्म हमारे होते हैं और कर्म के अनुसार में हम एक शरीर से दूसरे जन्म में जाते हैं, सुख दुख इत्यादि भोग करते हैं और यह लगा रहेगा अनंत कोटि जन्मों तक। इस पर रिसर्च हमारे ऋषियों महर्षियों ने किए हैं, वेद इसके प्रमाण हैं। गीता इसका प्रमाण है, भागवत इसका प्रमाण है, पुराण इसके प्रमाण है, ये सब सारी चीजें तथ्य हैं, सत्य हैं। हम भगवान के अंश हैं, किसी कारण से भगवान को भूल करके हम इस शरीर में आए हैं, और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि हम फूल बिना भगवान को हम नहीं जान लेंगे। ये भगवान क्या तत्व है, मैं कौन हूँ। इसलिए मनुष्य जन्म लाभ करके किसी प्रकार से जीवन रक्षा के लिए, निर्वाह के लिए हम कुछ वाणिज्य व्यवसाय, नौकरी व्यवसाय इत्यादि कर सकते हैं, और करके इसी को हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ। विश्व ब्रह्मांड का नियंता और संचालक कौन है, यदि हम नहीं जान करके हम चले जाएं, हमारा जीवन बेकार का गया। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह बतलाया गया है, विशेष करके तुलसीदास जी ने भी बतलाया, गीता भागवत ने भी बतलाया। श्रुति सिद्धांत यह है, उर्गारी भजिए राम सब काज विषय। मनुष्य जन्म लेकर के यदि भगवान को जान लिया इसमें रहते हुए, आत्मा को, ये आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा माने मैं, तो उसका जीवन सार्थक है, और नहीं तो जन्म मरण के चक्र, यही भाव रूप कहलाता है, पुनः पुनः जन्मना, पुनः पुनः मरना, और सुख दुख इत्यादि का भोग करना। इसलिए हमारे शास्त्रों का ऐसा विचार है, हमारे वैदिक संस्कृति का विचार है, आज विश्व इस विचार को ग्रहण करने जा रहा है सारा दिन, इसके अतिरिक्त तो सुख नहीं है। मनुष्य जीवन लाभ करके इस तथ्य को अनुसंधान किया जाए, रिसर्च किया जाए कि हम कौन हैं, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, भगवान के नाम के बिना हम नहीं सुखी। सस्ता सरल उपाय ये बतलाया गया, क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रंजता, भगवान के नाम के बिना गति नहीं है। सब सीधा उपाय, तप जप हम नहीं कर सकते, दान भी नहीं कर सकते, यज्ञ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा शुद्ध नहीं है, ऐसा यज्ञ कराने वाला नहीं। इसलिए एक केवल उपाय, चलते फिरते उठते बैठते काम करते समय, घर में रहते समय, सोते समय, उठते समय, कभी भी भगवान का नाम आप लोग कर सकते हैं, और उस नाम का इतना महात्मा और इतनी शक्ति है, उसके द्वारा हमारा जीवन सुधर सकता है, और हम आत्मा को भी जान सकते हैं, और हमारे साथ पाप इत्यादि भी दूर हो सकते हैं, और हमारा जीवन पवित्र होकर के भगवान के चरणों में हम लग सकते हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, आप लोगों का बहुत समय होगा, आप लोग जाने के लिए भी उत्कंठित हैं, इसलिए एक महामंत्र कर दिया जाए, और महामंत्र के बाद में आप लोग जा सकते हैं, हम लोग भी जाए। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझें, भारतीय संस्कृति के वेद शास्त्र के इत्यादि जो बातें हैं, मैक्समूलर और पाश्चात्य देशों ने हमें गुलाम बनाने के लिए ये कहा ये माइथोलॉजी है, आप लोग उनके भ्रम में मत पड़े। पाश्चात्यों की दृष्टि से हमारे शास्त्रों को और हमारे वैदिक विचारों को न समझें, यह बहुत बड़ी भारी भूल होगी। इसलिए इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ करके हमारे भारतीय के विचारों को ग्रहण करेंगे। आप देखिए, खुद ही हरिनाम करेंगे तो देखिए इसका क्या फल होगा। यदि माता पिता का आप लोग आदर किया, यदि हमारी भारतीय संस्कृति में रहे, गधों और घोड़ों की तरफ में पाश्चात्य देशों की संस्कृति में 10 बार डाइवोर्स किया और पति बदले, इसमें सुख शांति नहीं है, जिनके बेटे ये नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छी तरह से विचार करके अपने भारतीय विचारों को ग्रहण करके सुख और शांति से आप रहिए, यही हमारा निवेदन है। भेड़ की तरफ में, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ में मत बहिए, क्योंकि आज वो सुखी होने के लिए हमारे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। केवल वही नहीं, अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र में, उन्नत माने ये कहता हूं भौतिक जगत में उन्नत, पारमार्थिक जगत में एकदम अंधे हैं, उनको कुछ भी विचार नहीं है। फ्रांस इत्यादि आप लोग जितना उन्नत समझते हैं, वहां पर जाने से आप लोग समझेंगे, कुत्ते पालते हैं, 10-10 कुत्ते साथ में रखते हैं, टहलने के लिए कुत्ते के लिए जाते हैं। मैंने पूछा, अरे कुत्ता किस लिए रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं कि स्त्री पर विश्वास नहीं, बेटे पर विश्वास नहीं, कुत्ते पर विश्वास नहीं। इसे ऐसी संस्कृति हमारी नाना पाए, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, ने? और हम लोग सुखी रह सकते हैं इनके विचारों पर रह करके, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। आप लोग इसको अनुभव करने की चेष्टा करें, यदि विश्वास में है तो अनुभव करें, देखिए जैसे इसका क्या फल होता है, जरूर सुखी शांति रहेंगे। अंततः आज अभी थोड़ा सा ये महामंत्र करेंगे, आप लोग जरूर कीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
हम लोग अभी जो कीर्तन कर रहे हैं इनके माता पिता के उपलक्ष्य के लिए कर रहे हैं। वो शरीर बदलने पर कहीं ना कहीं जरूर होंगे, मैं उनका आवाहन करता हूँ मंत्र के द्वारा, और ये कीर्तन का फल उनको मिले, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहाँ भी हमें उनको निकाल करके उन कष्टों से, यदि कष्ट में हों, मैं समझता हूँ कि कष्ट में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जीवन में किया है, एक दो बार नहीं हजारों बार किया है, इसलिए उनकी दुर्गति तो नहीं हो सकती। तो जहाँ भी हों ये कीर्तन का फल उनको मिले और वो बड़े आनंदित होंगे, इसलिए हम लोग ये उनको समर्पण कर रहे हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो वो सुखी और शांति से रहें और इस चीज को प्राप्त हों। बोलिए आज से 500 वर्ष पहले किसी ने वायुमंडल में कोई शब्द कहा, वायु के तरंगों में एक छोर से विश्व में सर्वत्र वो पहुंच जाता है। अभी हम जो कहते हैं वो वायुमंडल में विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है उसके तरंगों में वो तरंगायित होकर के वहां न पहुंच जाए विश्व के अंतिम छोर में। जैसे अभी एक सरोवर में हमने एक पत्थर मारा, उसमें तरंगे होती हैं और तरंगें उठ करके अंतिम किनारे तक लगती हैं और वो नष्ट नहीं होती। तो वैसे ध्वनि एक ऐसी विद्या चीज है कि ध्वनि की तरंगें उठती हैं वायुमंडल में और वो कभी नष्ट नहीं होती। अभी तानसेन का कीर्तन अभी सुनते हैं कि अभी आने वाले हैं रिकॉर्ड में। रामचंद्र जी ने कहा क्या, कृष्ण ने गीता जो कहा उसके भी सुनते हैं, जो उसके लिए रिसर्च हो रहा है। अभी हम यहाँ कहते हैं तरंगे कहाँ पहुँच जाती हैं, इसी तरंगों के ऊपर में ये सब चीज़ें निकल रही हैं, अद्भुत अद्भुत चीज़ें, यहाँ तक कि छवि भी पहुँच जाती है कहाँ कहाँ। तो हमारी जो तरंगे हैं ये हरे कृष्ण की तरंगे, उनकी जीवात्मा यदि अजर अमर है आत्मा, वो कभी नहीं मरती, तो वो तरंगे उनको स्पर्श नहीं करेंगी,
जरूर करेंगे, इसलिए इसमें शक की बात नहीं है।
जो एक आदमी मर गया है तो ऊपर में, यदि ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर हम यदि किसी को भोजन देते हैं तो वो कैसे पहुँच जाएगा? नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं, अरे गाली कैसे पहुँच जाती है? तुम्हारी मैया बैठी है बम्बई में या इंग्लैंड में, यहाँ से तेरी माँ की, तो वो कैसे पहुँच गई? उसके लिए तुमको लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है बेटे? हूँ लड़ाई क्यों झगड़ा करता है? तो ये हमारी गाली पहुँच जाती है यदि, तो ये शब्द नहीं ब्रह्म नहीं पहुँचेगा।
इसलिए ये सब बातें पर विचार करना, आधुनिक लोगों को, शिक्षित लोगों को इस पर विचार करना है। इसलिए एक एक बात, इसे एक एक बातों के लिए मैं करूँ, ऐसे सब चीज़ों की युक्ति और प्रमाण है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति को झूठा मूठा और ऐसा मत समझिए, इसके अंदर में बहुत गंभीर विचार है, इसकी मूल चीज़ें हैं। आज विश्व किसी न किसी दिन सुखी होने के लिए धर्म जरूर झुकेगा, और झुक करके ही तभी उसको सुख और शांति मिल सकती है। ये हमारी चीज़ें हैं, हमारी चीज़ें चली गई विदेशों में, और विदेशों की खाक झूठ मूठ की चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इसलिए अपनी संस्कृति में पुनः विश्वास रखिए, और ये संसार में सबसे एक बात मैं उदाहरण के लिए देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक कोई रिसोर्स के स्कॉलर आए, पूछ रहे थे जो रामचंद्र जी के पिताजी के हरण के समय में लक्ष्मण जी ने वो जो गंडी बांध दी और रावण उसको पार करने जा रहा है और उसमें से चिंगारियां आती हैं, ये क्या चीज़ है? सचमुच में ऐसी बातें हैं, मंत्र में ऐसी शक्ति हैं, अमोघ शक्तियां हैं। इसलिए अविश्वास करने की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका नाम मंत्र है। आज साइंस में जो मेटेरियल में जो साइंस है वो पहले शब्द साइंस था, शब्द विज्ञान था, शब्द विज्ञान के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए शब्द विज्ञान के द्वारा हम उनकी श्रद्धा के प्रति श्रद्धा उनको हम अर्पित कर रहे हैं।
सत्संग जो हृदय में क्रांति ला दे, आमूल परिवर्तन कर दे, ऐसे सुनाने वाले संत बहुत कम दिखाई देते हैं। महाराज जी का सत्संग कल भी एक स्थल पे होगा, मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ, आप लोग वहाँ पधारिए। सैनिक फॉर्म में H20 सैनिक फॉर्म स्थान है, ये सैनिक फॉर्म में एक जगह है कंट्री क्लब, बड़ा मशहूर है, वहाँ सुबह 10 से 12 बजे तक। ये साकेत के पास पड़ता है सैनिक फॉर्म, वहाँ पे है, वहाँ पे आप लोग सादर निमंत्रित हैं। देखिए बंदूक की जो गोली है उसको बुलेट कहते हैं हाथ में, उस बुलेट को लेके कहीं मारा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खरोंच आ जाएगी, हाथ से फेंक के मार देंगे ना खरोंच आ जाएगी, लेकिन वही बंदूक से निकल के लगे किसी को तो वो जीवन ले लेगी। ऐसे ही ये जो शब्दों की ताकत महाराज जी ने बताई है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे जैसा कोई बोलेगा तो वो बाहर से फेंकी हुई बुलेट की गोली है, जैसे ऐसे महात्माओं के मुख से जब वो निकल के आती है तो जैसे बंदूक के अंदर से गोली निकल के आके करिश्मा दिखाती है, ऐसे ही हम जीवन, हम लोगों के जीवन के जीवन में करिश्मा करेगी। तो वो करिश्मा का अनुभव करने के लिए आप लोग कल वहाँ पे पधारिए। और
वो जल्दीबाजी में लोगों को समय नहीं था इसलिए आप लोग नहीं कर सके, कल वहाँ पर सब सहयोग देंगे, आप लोग कीर्तन करेंगे। कलयुग का धर्म तो कीर्तन ही है, नाम संकीर्तन होगा, आप लोग उसमें जरूर पधारेंगे।
गौर प्रमाण।